Our good point. Yes, complete. Aaj Gyan Yog. पिछले दिन क्या बनना था, किस तरह काम ज्ञान को आवृत्त करते हैं, हाउ लस्ट कवर्स नॉलेज एंड हाउ इग्नोरेंस बाइंड अस। दो काम ला तीसरा अध्याय बनना है। एक क्या करता है, काम क्या करते हैं, ज्ञान को आवृत्त करते हैं, और अज्ञता क्या करते हैं, बांधते हैं, अज्ञता बांधते हैं। तो इसीलिए कृष्ण क्या बोलता है, निष्काम कर्म के बारे में बोला है। निष्काम कर्म क्या है, ड्यूटीफुल डिटैच्ड वर्क। जो कर्म तो करना पड़ेगा लेकिन वो ज्ञान के साथ, ड्यूटीफुल डिटैच्ड वर्क। तो जो ये जो ज्ञान से जो कर्म है उसको कहता है ज्ञान, वही वही पूर्ण दिव्य ज्ञान है। तो वो ज्ञान अभी अयोध्या वर्णना कर रहा है, इसलिए अयोध्या का नाम है ज्ञान योग। एक से दस, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्ण। ट्रांसल नॉलेज अबाउट कृष्ण, ग्यारह से पंद्रह, अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। संक्षेप में ट्रांसेंडेंटल यहां टीडी लिखते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। 16 से 24, अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। 25 से 33, सेक्रीफाइस लीड टू ट्रांसेंडल नॉलेज। ये अंश में अलग अलग यज्ञ के बारे में वर्णन है कि ये यज्ञ कैसे है, दिव्य ज्ञान यज्ञ के माध्यम कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। सेक्रीफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं, टीडी लिखा था ना, ओटीडी नहीं मत लगना, ओटीडी तो सही है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। लास्ट है 34-42 कंक्लूशन. कंक्लूशन क्या है? कंक्लूशन है ये ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, को नहीं कर सकते, कैसे श्रद्धा के साथ, जो श्रद्धा नहीं हो क्या होगा, इस तरह उपसंहार है. ज्ञान पहले कृष्ण ने यह शुरू किया, इमाम विवस्वते जगं प्रक्तवान अहम अव्ययम्. ये ज्ञान कृष्ण बोल रहे हैं पहले किसको दिया था? विवस्वान. विवस्वान किसको दिया था? विवस्वान मनु को. मनु इच्छा को किसको दिया था? इच्छा को किसके दिया था? किसने विवेचन को क्यों दिया? विवेचन मनु को क्यों दिया? मनु इच्छा को क्यों दिया? राजा तो है उनका लड़का, मेन तो चीज हुआ है. वो राजा है, राजा इसीलिए संतान तो बहुत है राजा इसीलिए. लेकिन किसको दिया? सूर्यदेव उनका पुत्र मनु को, मनु उनका पुत्र इक्ष्वाकु को, तो राजा उनके पुत्र को दिया. इक्ष्वाकु का पुत्र तो राजा होगा, उस तरह दिया. गीता पे नहीं है वो वर्णन किसको दिया, लेकिन अगले श्लोक में क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम. इस तरह उन्होंने भी आगे इस तरह दिया था. हम देख रहे हैं ज्ञान किसके लिए? राजा के लिए. राजा का काम क्या है? राज्य पालन. अतएव ये ज्ञान राज्य पालन करने के लिए बहुत जरूरी है. हा? तो ये ज्ञान तात्पर्य पूर्वक वर्णन किया. आज कितना दिन पहले ये ज्ञान अर्जुन को दे रहा है? हाँ, 5000 साल पहले. तो पहले यह पूर्वक कर रहा है इस तरह 20 लाख वर्ष पूर्व मनु उनका पुत्र को यह ज्ञान दिया था. इक्ष्वाकु को मनु यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था 20000 साल पहले, 20 लाख वर्ष पहले. और वर्तमान मनु का आयु है 30 करोड़ साल, और उनमें से अभी 12 करोड़ चल रहा है. तो पूर्वज कहा था तात्पर्य में भगवद गीता आज से 12 करोड़ 4 लाख साल पहले दिया था, लेकिन मानव समाज आज से 20 साल से चल रहा है. यह किया व्याख्या है 12 करोड़ साल पहले. पहले भगवद गीता कितना पहले दिया था? 12 करोड़ साल. इसका अर्थ क्या? 12 करोड़ साल कैसे होता है? हाँ, 12 करोड़ साल पहले. हाँ, तो 12 करोड़ साल पहले कैसे हो गया? हाँ, ये बोला 12 करोड़ 4 लाख. हाँ, किसको? विवस्वान को. कैसे हिसाब आते हैं? हम देखते हैं 4 युग का उम्र कितना है? 43,20,000. ठीक है, 4 युग का उम्र. तो एक मनु का उम्र कितना है? एक मनु का उम्र कितना है? 71. तो अभी जो मनु है इसके उम्र कितना चल रहा है? हाँ, वेरी गुड। 28 चतुर्युग में भगवान आते हैं, अष्टविंशति चतुर्युग के द्वापर शेष, 28 चतुर्युग में भगवान आते हैं। तेरा कृष्ण आया था तब मनु की उम्र कितना चल रहा है? 28 चतुर्युग। तो 28 से गुण देंगे कितना होगा? कैलकुलेटर है किसी के पास? कैलकुलेटर देखो ना, मिल रहा है? 8 कितना?
12 करोड़
96 लाख 9,60,000 इस तो पूर्वा दिए 12 करोड़ 4 लाख तो उस तरह है। हाँ, तो 12 करोड़ तो ठीक है, तो यह लगा 12 करोड़ चल पहले किसको दिया? भगवदगीता प्रथम 12 करोड़ साल बच्चे मानव समाज ये ज्ञान 20 लाख साल पहले से आ रहा है। अभी 20 लाख साल से क्यों आ रहा है? ये कब है? ये किसके उम्र चल रहा है? मनु का। तो जब मनु का जन्म ग्रहण हुआ उसी टाइम दिया, तो विभूषण मनु को कब दिया? 12 करोड़ साल पहले, ठीक है। अभी 12 करोड़ साल पहले से दिया, अभी उसके बाद क्या आता है? 20 लाख कैसे आते हैं? अभी ए हमारे कॉलेज की उम्र कितना है? 4 लाख। तो उसके अंदर 5,000 चल रहा है। दापर युग की उम्र कितना था?
8,64,000।
अच्छा, और दापर का कितना था? 12,96,000। तो अभी मिलक कितना दिन पहले दिया था? त्रेता का पहले था सत्य युग में, तो त्रेता दापर ये मिला लगभग 20 लाख के ऊपर हो रहा है। हाँ, 20 लाख के ऊपर इतना दिन पहले से ये ज्ञान अभी चल रहा है। इस तरह भगवत गीता ज्ञान सत्ययुग का शुरू में दिया नहीं, सत्ययुग शुरू में नहीं दिया। अरे वो कौन सा डेट अभी तो पता नहीं है, डेट कम से कम इतना दिन पहले है। सत्ययुग में दिया, सत्ययुग डेट मालूम नहीं, लेकिन कम से कम त्रेता युग का पहले, तो कम से कम तो इतना दिन है, मिनिमम इतना, ज्यादा तो हो सकता। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व, इस तरह ज्ञान परंपरा क्रम में आते हैं, आते आते क्या होगा? सब काले नहीं हुआ आता, काल के गति में क्या आते हैं? नष्ट पे आते हैं। एक का मुख से दूसरा मुख के आते हैं ना, बहुत गड़बड़ होते हैं। एक आदमी बोला, अरे राजा का मैं बच्चा, रानी का एक बच्चा हुआ है, दिखने बहुत काला है। राजा का बच्चा सदन तो अच्छा होना चाहिए दिखने, बोले काला है। तो वो बात में, अरे राजा का बच्चा इतना काला है, दिखने का लायक नहीं। तो वो बात सुनकर दूसरा आदमी बोले, रानी का जो बच्चा है ना, कौवे की तरह बच्चा है। तो वो बात जो दूसरा किसी को बोला, बोले रानी के लिए कौवा बच्चा हो रहा है, कौवा का बच्चा उड़ के जा रहा है। कौवा हो रहा है, उड़ के जा रहा है। तो इस तरह एक मुख से दूसरा मुख जाता है, बात इस तरह परिवर्तन होते हैं। जिस तरह हम जब कोई किसी का मेजरमेंट लेकर काटते हैं, तो उसका मेजरमेंट ले दूसरा काटेगा, दूसरा काटेगा तो साइज से अलग हो जाएगा कुछ, लेकिन जो मेजरमेंट ले काटेगा उसको ही बार बार लगा के हम काटते हैं। लेकिन उसको देखा दूसरा, उसको देखा तो बाद में देखा तो उसका सब कोई संपर्क नहीं है। तो काल का गति में इस तरह नष्ट होते, इसीलिए कृष्ण कहता है वो जो ज्ञान में जिया था नष्ट हो गया था, अभी मैं होगा फिर मैं तुमको दूंगा। क्यों दूंगा? हाँ, भक्तोशी सखा, तो भक्त शाखा होने का क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है? ज्ञान प्राप्त कर भक्त शाखा होने क्या जरूरत है? रहस्यम ही ये तो उत्तम, ये रहस्य समझ सकते, भक्त नहीं होगा तो रहस्य नहीं समझ सकते। जिसका दूध साप के देंगे क्या होगा? जहर ज्यादा होगा। मूर्ख को बुद्धि देगा क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। क्या मुझको बुद्धि दे रहा है? तो यदि भक्त शाखा नहीं होगा तो ज्ञान का उपलब्धि नहीं कर सकते। तो उपलब्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? रहस्यम ही तो उत्तम, ये रहस्य समझने के लिए क्या होना चाहिए? भक्त शाखा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। तो सुनने से अर्जुन इस तरह क्या कोई सेंटिमेंटल नहीं था, कृष्ण जो बोला है वो स्वीकार करेंगे नहीं, उनका थोड़ा बुद्धि है, जो नहीं समझ रहा पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हे कृष्ण, तुम और हम तो एक साथ जन्म ग्रहण किया है, तो इतना दिन पहले सूर्यदेव उसको जो पहले ज्ञान दिया मैं कैसे समझूंगा? इस तरह अर्जुन ने फालतू बात क्या कर रहा है, तुम्हारे एक साथ जन्म हो कैसे एक नाटक चल रहा है? इस तरह चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं किया। अर्जुन नहीं समझ रहा है लेकिन विनम्र रूप से पूछ रहा है, हे कृष्ण तुम्हारा मेरा जन्म एक साथ हुआ है, मैं कैसे समझूंगा तुम्हें इस तरह दिया था? ये पूछना पूछ रहा है लेकिन अटैकिंग नहीं है, खुद का दुर्बलता तो बोला नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं, तुम व्याख्या करो। इस तरह हम बहुत कुछ नहीं समझ सकते, प्रश्न करने का भी तरीका है नहीं, क्यों इस तरह क्यों प्रश्न पूछ रहा है? नहीं प्रश्न वो जो बोला सही ठीक है, हम नहीं समझ रहे, हमारी गलती है। इसीलिए बोला अपरंग भावतंग जन्म परंग जन्म विवश्यत, तुम हम एक साथ जन्म किए कथम है तो बिजानिया तमादे प्रत्यगन की, यह क्या बोला? अपरंग भगवत जन्म परम जन्म विवश्यत, तुम्हारे अपरंग भगवत जन्म आपका जन्म पद में हो लेकिन परम जन्म विवश्यत, विवश्यन का पहले जन्म हुआ था। हाँ प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान में, तुम्ही तो नवीन शाखा से दिन जन्मिले, कोटि कोटि वर्ष पूर्वे सूर्य जन्म निले, एक कथा की करे बुझी पूर्व एत दिने उपदेश पुरातन तुम्ही बोले छिले। तो आप तो कुछ दिन पहले एक साथ हम जन्म लिया लेकिन सूर्यदेव कोटि कोटि साल पहले आप उनको ज्ञान दिया, मैं कैसे समझूंगा? तुरपा तत्पुज में कहता है अर्जुन को इस तरह प्रश्न पूछने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन भविष्य में आदमी के मन में यह प्रश्न आ सकते, इसीलिए अर्जुन ने पूछा ताकि कृष्ण खुद ने उनको उत्तर दे सकते। तो भगवान उत्तर दे रहा है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो चर्च, तो हाँ तुम्हारा मेरा जमन बहुत बार हुआ था लेकिन तुम भूल गया मैं भूला नहीं। अब पूछना है अर्जुन भूल गया लेकिन भगवान क्यों नहीं भूलते हैं? अर्जुन तो भागता है लेकिन अर्जुन भूल गया भगवान क्यों नहीं भूलते हैं? मनुष्य के लिए शरीर परिवर्तन होता है, इसीलिए शरीर बुद्धि शरीर का अंश है, सूक्ष्म शरीर है, जब परिवर्तन है तो उसके साथ तो जाएगा। हाँ कोई आदमी बोला था मैं आप इतना रुपया कमा रहा है तो जब नरक में जाएगा तो क्या होगा? बोले क्या समस्या? बोले वो बहुत मच्छर है। हाँ तो बोले मच्छर ठीक है, मस्किट नहीं लेके जाएगा। बोले वो तो इतना अच्छा मस्किट नहीं मिलेगा तो सिरा फटा बोले सुई सुटा लेके जाएंगे। तो बाद में सोचेगा हाँ कि मृत्यु के साथ लेके जा सकते कि कुछ नहीं लेके जा सकते, बुद्धि जब भी साथ में नहीं जाएगा। तो जब बुद्धि जब साथ में नहीं जाएगा स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर त्याग करना पड़ेगा तो फिर कैसे याद रहेगा? स्वाभाविक याद नहीं रहेगा। तो लेकिन कृष्ण का शरीर मन आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं है, इसीलिए कृष्ण नहीं भूलता है लेकिन जीव आत्मा भूल जाते हैं। तो कृष्ण का था अजय प्रसन्न आत्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया। कृष्ण कहता है यद्यपि मैं अजय हूं, अजय अर्थात जन्म रहित अव्यय हूं, भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति सम अधिष्ठाय संभव, मैं पृथ्वी को आश्रय करके संभव आमी, संभव शब्द का अर्थ है मैं आविर्भूत हूं। आत्म माया शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, युग माया के द्वारा, ये आत्म माया की हिंदी की पूर्वत के अगला अंतरा आत्म माया अर्थात आत्मा अर्थात भगवान का, भगवान जी जन्म ग्रहण करते हैं, बहिरंग शक्ति का अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। यह तो आचार्य जी लगने और एक व्याख्या करते हैं, माया शब्द अर्थ क्या है? माया अर्थ क्या है? हाँ, माया तो स्नेह, माया ममता, उसके माया ममता कुछ नहीं, वो माया बहुत ज्यादा है, प्रेम बहुत ज्यादा है। माया शब्द अर्थ क्या है? स्नेह, माया ममता। तो आत्म माया भगवान की खुद का माया से जीव के प्रति कृपा करके, हाँ, आत्म माया उनका खुद के प्रेम से, जीव के प्रति प्रेम है, इतना दिन भेज दिया पृथ्वी भौतिक जगत में, हो सकता है बहुत कष्ट में मेरा आपको जाना पड़ेगा, तो वह ये जो मनोभाव है आत्म माया, उनका खुद का हृदय का प्रेम आत्म माया। तो आत्म माया आना क्या जरूरत है? जरा जरा ही धर्म से ग्लानी होती भारत, जब धर्म में ग्लानी होते हैं और धर्म अभ्युत्थान तब भगवान आते हैं, और आगे क्या करते हैं? परित्राण साधुना बिना शस्य दुष्कृतम धर्म संस्थ। तो क्या करते हैं भगवान आगे क्या करते, क्यों आते हैं? तीन काम के लिए, कि एक है साधु का रक्षा करना, एक पापी को विनाश करना, और धर्म संस्थापन करना। अब ये काम करने के लिए भगवान आना जरूरत है क्या? धर्म संस्थापन के लिए भगवान आना जरूरत है? हजरत मोहम्मद धर्म स्थापन किया नहीं, जीसु क्रिस्ट किया नहीं, बहुत आदमी का धर्म संस्थापन कर है, तो भगवान का आना क्या जरूरत है? तो दूसरा किसी को कर सकते, तो यह वाला काम नहीं है। हाँ, विनाश ऐसे दुष्कृतम, दुष्कृत का विनाश करने के लिए भगवान का आना जरूरत है? बोलते हवा यदि बंद कर देगा, सूरज यदि बंद कर देगा, तो सब भूखा मर जाएगा। हाँ, तो भगवान का आना क्या जरूरत है? तो भगवान क्यों होते हैं? हाँ, साधु को, भक्त को उद्धार करने के लिए, भक्त को उद्धार करने के लिए। आश्चर्य लग रहा है, भक्त तो पहले उद्धार है, भक्त को क्या उद्धार करेंगे? जो भक्त हो तो उद्धार है। हाँ, जीवन मुक्त है, उच्चते या जश्च हरे दश्य कर्म न मनुष्य गिरा निखिल शिव अवस्था से जीवन मुक्त, ये शरीर में से मुक्त पुरुष है, उसका क्या उद्धार करेंगे? नाम से जो अभिव्यचार है ना, भक्ति योग ने सेवते स्वसमतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो इसके द्वारा क्या होता है? जो भक्त है वो तो पहले से उद्धार है, उसे क्या उद्धार करेंगे? नहीं, भक्त का कष्ट से मुक्त, भक्त का कष्ट क्या है? शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि, पहले तो कष्ट पहले खत्म, तो भगवान क्या करेंगे उनको? हाँ, भक्त को उद्धार करना, भक्त का दुख कष्ट से मुक्त करना क्या जरूरत है? कोई कोई जरूरत नहीं, ये काम एक भी नहीं है भगवान का। तो आचार्य जी लोग ने वर्णन किया है, एक है दो प्रकार व्यक्ति है, एक भक्तों को, शुद्ध भक्तों को के लिए जरूरत है, जो शुद्ध भक्त नहीं उनके लिए भी जरूरत है। तो आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं, टू डिलीवर द पायस हु आर अटैच्ड बाय माय ब्यूटी एंड क्वालिटीज एंड हु हंकर टू सी मी इन पर्सन एंड टू सेव माय एक्सक्लूसिव डिवोटीज फ्रॉम द मिजरीज ऑफ देयर मेंटल एजिटेशन, देयर हार्ट्स आर शटरिंग आउट ऑफ ईगरनेस टू सी मी। यह भगवान के आने का कारण है। एक तो है जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, हाँ, उन्होंने मेरा रूप को दर्शन करना चाहते हैं, और वो दर्शन करके वो भी शुद्ध होकर मेरे पास आ जाएगा। और एक है शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान को दर्शन नहीं करके वो बहुत कष्ट है उनका, वो जो शुद्ध भक्त भगवान का जो विरह सहन नहीं कर पाते हैं, वह जो मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। तो यद्य भी भगवान आते हैं, हाँ, जैसे पूर्व दिक सूरज का जन्म, सूरज पूर्व दिक में उठते हैं, विश्वनाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहता है, इसका अर्थ ही नहीं है सूर्य दिक पूर्व का माता है और पश्चिम दिक सूर्य का जमराज है, इस तरह नहीं है। यद्य भी सूरज पूर्व दिक में आता है लेकिन पूर्व दिक सूर्य का माता नहीं। तो इसी तरह यद्य भगवान किसी का गर्भ में जन्मग्रहण करते हैं लेकिन भगवान का इस तरह जन्म नहीं आता है। तो भगवान का जो जन्म कर्म हुआ क्या है, दिव्य है। भगवान के जन्म कर्म दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्त त्यक्ता देहम पुनर्जन नईति मामेति सर्जन। तो भगवान के जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, जो जानते हैं तो उनका ये जन्म में जगत में नहीं आना पड़ेगा। अभी प्रश्न आ सकते, ठीक है, भक्त लोग मानते हैं भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन अभक्त लोग तो स्वीकार करेगा नहीं भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। तो आचार्य जी लोग कहते ठीक, अभक्त लोग स्वीकार करेगा नहीं भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, इसीलिए उनका जन्म कर्म भी दिव्य नहीं है। जो भगवान का जन्म कर्म दिव्य नहीं मानते हैं तो उनको भी जन्म मृत्यु बाद आना पड़ेगा। वो लोग भगवान का ही शिकार नहीं कर रहा है, उनका जन्म मृत्यु दिव्य है, आना नहीं पड़ेगा, तो फिर उनका कैसे होगा? तो उनको भी रिश्ते बाद आना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम भी आओ इस तरह। और भक्त लोग शिकार करते हैं भगवान, तो भक्त बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो जिन्होंने इस तरह शिकार करते हैं वो व्यक्ति को क्या होता है, बीटो राग भय कदा मन में उपस्थित बहुव गाना तपसा पिता मत भव। जिन्होंने इस तरह आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो, हाँ, संपूर्ण रूप से भगवान में मग्न होकर भगवान का आश्रय लेते हैं, वो इस तरह पवित्र हो जाते हैं। और इस तरह पवित्र होने से भगवान धाम चले जाते हैं। इस तरह बहुत बहुत पहले, हाँ, बहुत उदाहरण है, बहुत ज्ञान तपस्या, बहु बहु ज्ञानी व्यक्ति इस तरह भगवत धाम प्राप्त किया। तो जे यथा माम प्रबोधनते तंग तथा भजन मामो वर्तन निवर्तनते मनुष्य। जो भक्त भगवान के जिस तरह डीलिंग करेगा वो उस तरह प्राप्त होगा। जो भक्त भगवान के साथ जिस तरह संपर्क प्रभावित तत्व जो कहते हैं, कोई यदि भगवान के साथ सुख रस बात्सल रस मधुर रस जो जिस तरह संपर्क करना भगवान उस तरह करेंगे। तो कोई कोई असुर भगवान को देखना चाहते कि भगवान को, भगवान के जब मर जाता है तो बहुत खुशी होते हैं, वो बोला ना कृष्ण भगवान नहीं है, यह इस तरह मर गया था, जरावाज इसके मर रहा था, चैतन्य महापुर इस तरह हुआ था। तो क्योंकि असुर लोग ये चीज बहुत आस्वादन करते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ उस तरह भी लीला भी करता है, ठीक है, तुमको सारा मजा देंगे दिखाएंगे। बच्चा लोग कभी कभी देखता है, देखना चाहते हैं पिता माता मेरा पराजित हो गया, तो इसलिए ड्रामा करते हैं, बच्चा के साथ युद्ध करते, बच्चा पिता माता पराजित है, बच्चा हाथ में देखो मेरा बस पराजित हो गया। तो उसी लोग इस तरह भगवान को भगवत तो शिकार नहीं करता, देखो उन्होंने मर गया था, तो भगवान उनके साथ उस तरह भी लीला करते हैं। जी जैसा मांग प्रबोधनते जन्म। तो अभी कोई कोई प्रश्न कर सकते हैं, तो भगवान यदि इतना इजीली इतना संतुष्ट होता है तो सारे भक्त भगवान का सेवा नहीं करके अलग अलग देव देवी का पूजा करके क्यों फालतू कष्ट भोग रहा है? इसका उत्तर क्या है? क्योंकि उनका मन में बहुत कामना वासना है, कांखंत कर्मणांग सिद्धि जजंत यह देवता, मन में बहुत सारे कामना वासना होने के कारण वो अलग अलग देव देवी का पूजा करते हैं। यह देवता ये भौतिक जगत का देव देवी की पूजा करते हैं। क्यों ही मनुष्य कर लोके सिद्धि भवती कर्म, क्यों जिस तरह पिता माता के पास जो कुछ इंद्र तृप्त वस्तु मांगेगा इतना जल्दी देगा नहीं, दुकानदार के पास जाएगा दे देगा, कितना तुरंत मिल जाएगा। तो भगवान के सिर के अलग देवदेव की पूजा क्यों करते हैं? ताकि उन्होंने सोचते हैं उनके पास जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो अभी भी पूछ ना सकते तो इस तरह मनोवासना क्यों होते हैं? सबको तो नहीं होता है, किसी किसी आदमी का इस तरह मनोवासना क्यों होते हैं? सब आदमी का मनोवासना क्यों शुद्ध नहीं होते हैं? नहीं केवल कृष्ण भक्ति करेंगे, केवल हम निरंतर हरि नाम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो इस तरह अलग अलग सब आदमी क्यों नहीं करते हैं? कोई कोई फिर देव देवी का पूजा क्यों करते हैं? कृष्ण उनको उत्तर दे रहा है ताकि अलग अलग आदमी का गुण अलग अलग प्रकार है। चार प्रकार जो आदमी है सत्य रज तम गुण के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध इस तरह सृष्टि है। इसलिए उनका चेतना अलग है, वासना अलग है, कर्म भी अलग होता है। चातुर्वर्ण माया सिस्टम। तो भगवान बोला है मैं इसको अलग अलग गुण से अलग अलग वर्ण विभाग सृष्टि किया, गुण कर्म विभाग से, जन्म के द्वारा नहीं। तुष्य कर्तर्म विभाग विद्धि कर्तर्म। लेकिन एक बात है, यदि मैं सृष्टि किया लेकिन मैं अकर्त, फालतू में उसको कंप्लेन मत करना, उनको कोई ब्राह्मण बनाया, इनको कोई शूद्र बनाया, मैं जिम्मेदारी नहीं हूं उनका। तुष्यकोत्तरम अभिमान विद्धि अकर्त। यदि मैं सृष्टि किया, मैं किया लेकिन मैं कर्ता नहीं हूं, मैं उसको क्षत्रिय बनाया नहीं। इस तरह अलग अलग व्यवस्था रखा था, गुण रखा था, जिसको वासना अनुसार वो ग्रहण किया है। बाजार में बहुत चीज मिलते हैं तो श्रद्धा के अनुसार आदमी मूल्य क्षमता के अनुसार अलग अलग चीज खरीद करते हैं। कोई आदमी कंप्लेन नहीं कर सकता, अरे हम सरकार को इतना टैक्स देता है, वो कैदखाना क्यों बना दिया? बदमाश सरकार है। नहीं, सरकार कैदखाना आपको पनिशमेंट देने के लिए, जो बदमाश है उनको देने के लिए। कोई आदमी लड़का बोल सकते हैं मेरा पिता माता मुझको ज्यादा रुपया दिया इसीलिए मैं नष्ट हो गया, ज्यादा पैसा दिया इसीलिए पैसा से बुरा ही काम किया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पिता माता का गलती, ज्यादा पैसा नहीं देता था मैं तो इतना बुरा काम नहीं करता था। तो ये पिता माता का दोष नहीं है। उसे किसने बोला है, यद्य भी मैं सृष्टि किया चतुर्भुवन सृष्टि लेकिन मैं करता नहीं हूं। नमां कर्मणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृह। मेरा क्या जरूरत है तुमको ब्राह्मण बना के किसी को शूद्र बना के मेरा क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा थोड़ी भाव से। न मे कर्मणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृह इति मांग जो भी जानाति कर्मा भी नश। जो इस तरह जानते हैं वो भी जब मुझको किसी जो मुझको इस तरह जानते हैं वो भी कर्मफल से मुक्त होता है, वो कर्म से बंधन नहीं होता है। तो कृष्ण कहता है एवं गत्ता कृतम कर्म पूर्व ही रूपी मुमुक्ष। जो पूर्व काल में जो मुमुक्ष जो मुक्ति का मना करना चाहते थे वो सब इस तरह मुझको समझ लिया था एवं गत्ता, जो मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मैं अकर्ता हूं, अव्यय हूं। तो इसीलिए है अर्जुन तुम भी उसी तरह कर्म करो। गुरु कर्म ही तस्मात्तम पूर्व ही पूर्व तरकृतम। तो पूर्व काल में जो जो मुमुक्षु जो मुक्ति कामना करना चाहते थे मुक्ति और वो कर्म करके मुक्त हो गया था उनका पदांग का निशान करे तुम भी उस तरह कर्म करो। तभी प्रश्न आते हैं कौन सा कर्म है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हमारे मन में हमेशा प्रश्न आता है यह करना ठीक या नहीं है। कोई रास्ता में 1000 रुपये पड़ा है, इसको लेना ठीक कि नहीं लेना है? लेगा तो चोर है, नहीं फिर नहीं लेगा, लगेगा भगवान की सेवा लगाएंगे। तो मन में प्रश्न आता कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो किम कर्म किम अकर्मेति कवय अप्यत्तम हिता तत्व कर्म पूर्वक्षा जदगत्ता मोक्ष शाश्वत। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, यह निर्णय करने से ज्ञानी व्यक्ति कभी कभी मोहित हो जाते हैं। एक मुनि के आश्रम में चोर आके घुस गया, तो डाक तो पास में पुलिस लोग आके देखा कहा है उनके, तो उनको पूछा आपका यहाँ पे है क्या, नहीं बोल रहे हैं। तो बाद में देखा है तो नहीं समझ पाता है अभी बोलना चाहिए कि नहीं बोलूंगा, यदि बोलूंगा है तो उसको मारेगा, आज भी मैं बोलूंगा ये है नहीं, फिर मेरा भी झूठ हो जाएगा, मेरा पाप हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे कर्म हमारे मन में कभी कभी, ये अर्जुन का है जिसे करना ठीक कि नहीं करना ठीक, तो केवल अर्जुन का नहीं, हमेशा इस तरह समस्या आते हैं। कभी कभी प्रभु आज एकादशी है, चौसठ माला करेंगे निर्जला करेंगे, कौन सा दोनों में एक करेंगे, कौन सा करेंगे। कभी कभी मन में इस तरह समस्या आते हैं। तो किसने कहता है इस तरह निर्णय करना वो मुश्किल होता है कभी कभी। तो इसलिए कृष्ण अभी बोल रहा है कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, क्यों कर्म क्यों अकर्म, कौन सा कर्म है कौन सा अकर्म है कौन सा विकर्म है, यह निर्णय करने से कवय बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते। इसीलिए मैं तुमको ऐसे वर्णन करूंगा कर्म अकर्म विकर्म जो जन के तुम अशुभ से मुक्त हो सकते। कर्म नहीं है बुद्धिवंग बुद्धिवंग से विकर्म, कर्म किया जानना चाहिए, विकर्म किया जानना चाहिए, अकर्म किया वो भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मना गति, कर्म का गति बहुत कभी है। सकाम कर्म यह कर्म है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो विकर्म है, और कृष्ण भक्ति मूलक जो कर्म है वो अकर्म है, कि कृष्ण के लिए जो करेगा उसको कोई फल मिलेगा नहीं, भौतिक जगत का फल मिलेगा नहीं, इसीलिए कृष्ण भक्ति कहता है अकर्म। कभी कभी कृष्ण भक्त बोला ये अकर्मा का दल है, ये कोई काम नहीं करता अकर्मा, सच है, तो कृष्ण भक्त को कृष्ण भक्त अकर्मा है, ना तो सकर्म कर्म करता ना तो विकर्म करता है, तो कृष्ण भक्त लोग अकर्मा है। कर्म नहीं अकर्म जो पश्चेत अकर्म नहीं तो कर्म जो सबुद्धिमान मनुष्य सदृक्ष कर्म कृत, जिन्होंने कर्म में अकर्म को दर्शन कर रहा है और अकर्म में कर्म को दर्शन कर रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म दर्शन कर रहा है, अकर्म में कर्म दर्शन, अकर्म अर्थात की कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति तो 24 घंटा परिश्रम करना है, तो अकर्म जब है अकर्म अर्थात कृष्ण भक्ति, वह भी क्या करना चाहिए कर्म। तो इस तरह इसमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए नहीं, तो कर्म का समझ कृष्ण इस तरह बोला है, जिस शर्म समारंभ कामो संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानां तमाहो पंडित बुद्ध, जिसका सारे कर्म प्रतिष्ठा काम और संकल्प रहित वो पूर्ण ज्ञान में अधिष्ठित है। बहुत करेंगे लेकिन काम संकल्प वर्जित है, ये रुपया कमाऊंगा यह इतना भोग करेंगे मेरा इतना होगा नहीं, काम संकल्प रहित खुद का इंद्रिय तृप्ति करने वासन नहीं। तो ज्ञानी ज्ञान बोलता है उसका जितना सारे काम है ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा पूरा नाश हो गया है, उसका कर्मफल नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कर्मफल के प्रति आसक्ति त्याग करके सर्वदा तृप्त रहना चाहिए, कोई आश्रय का अपेक्षा नहीं करके हमेशा कृष्ण भावनामय कर्म में युक्त रहना चाहिए, फल का आशा त्याग करके। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति उनका मन बुद्धि को सर्वत्र संयत करके फल का आशा परित्याग करके किसी के प्रति प्रभुत्व करने का जो मनोभाव हुआ त्याग करके जीवन यापन पालन करते हैं। जब इस तरह कोई करता है कोई पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको क्या करना चाहिए, जो कुछ प्राप्त होता है वह से संतुष्ट रहना चाहिए, जब इससे लाभ संतुष्ट द्वंद्वित सिद्धि असिद्धि में सम रहना चाहिए। तो वो इस तरह यदि करेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति प्रकृति का गुण से मुक्त हो जाता है, तीन गुण, और इस तरह जब कर्म करते हैं वो कर्म का क्या करते हैं बोलते हैं यज्ञ, क्योंकि उनमें सब कुछ किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए, तो इस तरह कर्म का कहते हैं यज्ञ। तो इस तरह यज्ञ करना जीवन का उद्देश्य है। तो ये जब इस तरह जब कर्म करेगा सब वो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाते हैं। जब भगवान के लिए जब यज्ञ में घी डालते हैं जो वहां पे जो ब्राह्मण है, जो घी है, यज्ञोग्नि है, सब जब कृष्ण के लिए हो रहा है सब ब्रह्ममय हो जाते हैं। हाँ, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। हाँ, क्यों करना चाहिए इसको? जिस तरह ज्यादा दूध पीने से जब डायरिया होता है तो क्या करना चाहिए? दूध से तैयारी और एक वस्तु दही पीने से वो डायरिया ला जाता है। उसी तरह हमारे भौतिक जगत में बंधन क्यों? भौतिक जगत के भोग करने का वासना किसको भोग किया? भौतिक जगत को। तो जब भौतिक जगत को भोग करने के कारण ये बंधन है, तो ये भौतिक जगत जितना कुछ है हमारे पास वह भगवान की सेवा में लगाएगा, तभी हम मुक्त हो सकते। तो उसको आगे 33 नंबर श्लोक तक विभिन्न प्रकार यज्ञ के बारे में वर्णन है। तो इस तरह यज्ञ के माध्यम किसी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते। एक्चुअली एक घंटा में एक अध्याय नहीं होता है। तो ये यज्ञ करने के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार उपासना करता है। कोई देवता को उपासना करता है, कोई कोई जो ब्रह्मचारी है मन संयम रूप अग्नि में श्रवण आदि इंद्रियों को अर्पण करते हैं। जो कोई कोई व्यक्ति है जो निष्ठापरण गृहस्थ है और शब्द आदि इंद्रिय में इंद्रियों को लगाते हैं, वर्णाश्रम धर्म यज्ञ है। उसके बाद 27 नंबर श्लोक में वर्णना है अष्टांग योग के माध्यम कैसे हो सकते। 28 नंबर श्लोक में चार प्रकार और यज्ञ वर्णन है। द्रव्य दान रूप यज्ञ, किसी द्रव्य दान करना, तपस्या रूप यज्ञ, अष्टांग योग, पारमार्थिक ज्ञान लाभ, श्रद्धाए, बोधिशास्त्र श्रद्धाए, या 28 नंबर श्लोक में चार प्रकार योग के बारे में वर्णन है। 29 नंबर श्लोक में प्राणायाम रूप योग, जो अष्टांग योग का एक अंश है, प्राणायाम रूप योग के बारे में वर्णन है। और 30 नंबर श्लोक से उपसंहार आ रहा है, इसको ये अलग अलग यज्ञ के बारे वो उपसंहार आ रहा है। तो इस तरह यज्ञ करने के बाद तो यज्ञ से उत्पन्न जो प्रसाद है तो वो अमृत है, वह आस्वादन करके व्यक्ति पाप से मुक्त होके भगवत धाम लौट जाते हैं। तो हे अर्जुन, ये जगत में यज्ञ किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकते ये जगत में। तो ये जगत में जब सुख नहीं है पर जगत के तो बातें नहीं आते हैं। तथे यज्ञ करना बहुत जरूरी है। एवं बहु विधा यज्ञ विदता ब्रह्मण मुखे कर्मजन्मिति तान समान एवं गतविष्यति। इस तरह शास्त्र में बहुत सारे यज्ञ के बारे में वर्णन है। तो विशेष रूप से सारे यज्ञ को दो भाग करते हैं, एक है द्रव्यमय यज्ञ, एक है ज्ञानमय यज्ञ। तो द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ, क्योंकि अंतिम में सारे द्रव्यमय यज्ञ ज्ञाने परिसमाप्त होते, अंतिम सब ज्ञान में आते हैं। जितना द्रव्यमय यज्ञ करोगे एक दिन ज्ञान आएगा, नहीं मेरे फालतू है ये करना ठीक नहीं है, तो सब छोड़ देगा एक दिन। तो द्रव्यमय यज्ञ अच्छा है, लेकिन ज्ञानमय यज्ञ और श्रेष्ठ, क्योंकि सब एक दिन ज्ञान के माध्यम। अभी जो द्रव्यमय यज्ञ जो कुछ कर रहा है वह भी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं होगा कैसे? द्रव्यमय यज्ञ जो दान कर रहा है, कुछ कर रहा है, यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? किसको दान करना? किसी को दान कर दिया वो रुपये लेके उनको सामान में देख रहा है, शराब पी रहा है, तो बोले किया फालतू गलत काम किया, इसको क्यों दान कर दिया? दान किया लेकिन बाद में सोचना ये आदमी को क्यों मैं दान किया। तो इस तरह देखते हैं कि सब कुछ ज्ञाने परिसमाप्त है, अर्थात ज्ञान एक यज्ञ के माध्यम क्या लाभ करना चाहिए? हमें चिन्मय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये चिन्मय ज्ञान कौन प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने का तरीका क्या है? हाँ, तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न शब्द। ये जानना चाहिए, ये दिव्य का हमें जरूरी है और ये किसके पास है? हाँ, ये पाने क्या कोई दुकानदार को जाके बोले मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इनको बोल के क्या फायदा है? तो किसके पास वो ज्ञान है वो जानना चाहिए। हाँ, और जाके क्या करना चाहिए? उसका प्रणति निवेदन करना चाहिए, विनम्र रूप से सेवा करना चाहिए, सेवा के द्वारा संतुष्ट करके उनका प्रश्न पूछना चाहिए। जब उन्हें संतुष्ट होगा तब उन्होंने क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ये चिन्मय चिन्मय ज्ञान प्रदान करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान लाभ करने से क्या होगा? जद्गतना पुनर्मोह, ये ज्ञान लाभ कर दूसरा बार और मोहग्रस्त नहीं होगा। वो ज्ञान किया है, क्या ज्ञान देगा उन्होंने? वो ज्ञान क्या देगा? जिनो भूतानी अशेषानी दुख से आत्मनि अर्थमयी। तो उन्होंने ये ज्ञान देगा, सारे जीव भगवान का अंश है और सारे जीव भगवान में अवस्थित है। तो अभी हो सकते नहीं, मेरा जरा तो मैं तो बहुत पाप कर्म किया है, ये ज्ञान लाभ कर मेरा कैसे होगा? कृष्ण आश्वासन देते नहीं, तुम यदि सबसे पापी से बड़ा पापी होगा कोई भी समस्या नहीं, अपिचेद से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम, सबसे बड़ा पापी से पापी होगा फिर भी समस्या नहीं है, लेकिन एक ज्ञान रूप तरणी में आश्रय करोगे तो सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। बोले हो सकते क्या कभी? हाँ कैसे? तो कृष्ण उदाहरण देता, जिस तरह एक चिंगार, हाँ चिंगार से एक क्विंटल लकड़ी को जलाना चाहिए एक चिंगार लगेगा, और हिमालय पर्वत के तरह लकड़ी को जलाने के लिए कितना चिंगार लगेगा? एक चिंगार काफी है। एक घर एक महीने से अंधेरी है और एक घर एक करोड़ साल से अंधेरी है, तो स्विच लगाने से कितना बात प्रकाश आएगा? कौन घर में कितना बताएगा? एक साथ आएगा। हाँ, यह जैसे जहां की समृद्ध अग्नि भस्म छत्कृत अग्नि जिन्हों ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म छत्कृत, इस तरह अग्नि जिस तरह लकड़ी को भस्म करते हैं उसी तरह ज्ञान रूप अग्नि पाप को इस तरह भस्म करते हैं। क्योंकि बोले दूसरा कोई तरीका है क्या? ज्ञान सरा बल नहीं और कुछ नहीं, ज्ञान सिर्फ दूसरा के मार्ग नहीं है। न ही ज्ञान सदिश पवित्र मेरे विद्या, ज्ञान के द्वारा पवित्र वस्तु को ये जगत में है ही नहीं। तो अंत में कृष्ण क्या बोल रहा है? यद्यपि ये ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकते? तो श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान का। और श्रद्धा के साथ क्या चाहिए? तत्पर संयत इंद्रिय, तत्पर शब्द का अर्थ क्या है? तत्पर अर्थात रिमेन अटैच्ड, तत्पर संयत इंद्रिय, उसके प्रति आसक्त होना चाहिए। नहीं, वो ज्ञान क्या जरूरत है? नहीं, आसक्त होना तत्पर, और साथ साथ ज्ञान क्या? संयत इंद्रिय, इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। और ये ज्ञान लाभ करने से क्या होगा बाद में? ज्ञानम लब्धा परां शांति, ये ज्ञान लाभ करके परम शांति। पहले केवल ये ज्ञान लाभ के क्या होगा? न पुनर्मोह, दूसरे बार मोहग्रस्त नहीं होगा। बाद में एक बार बोला पाप से मुक्त होगा, अभी क्या पंडा रहा है? परम शांति, ये ज्ञान के द्वारा क्या हो रहा है? मोहग्रस्त नहीं होगा, पाप से मुक्त होगा, और यह क्या वर्णन आता है? धर्म लब्ध है परम शांति। कितने दिन बाद मिलेगा शांति? अचीर है ना अधिकति, तुरंत तुरंत। लेकिन जो श्रद्धाशील नहीं है उसका क्या होगा? अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ है अश्रद्धालु है संशयात्मा है वो विनाश हो जाता है। नायोंग लोकोस्ति नापर नाशकं संशयात्मानः, ये संशयात्मा व्यक्ति को ये जगत में तो सुख नहीं है, पर जगत में तो क्या बोलने का क्या है, पर जगत में नहीं हो। अतएव हे धनंजय, जो निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म त्याग करके ज्ञान के द्वारा संशय नाश करके आत्मा का चिन्मय स्वरूप अवगत होते हैं, उनको कोई कर्म उनको आबद्ध नहीं कर सकते। अतएव हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से उत्पन्न जो असुर संशय है हुआ है, उसको ज्ञान रूप खरग, खरग का हिंदी क्या है, ओसी हाँ कुराली नहीं हुआ क्या, हाँ तलवार, तलवार। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान रूप जो संशय रूप जो असुर उत्पन्न हुआ है, उसको ज्ञान रूप खरग से छिन्न करो और उठ खड़ा हो, युद्ध करो। तस्मात तम अज्ञान संभूतम हृदस्तम ज्ञानाशीनात्मन चित्तैन संशय योगम अतिष्ठ भारत। हे अर्जुन, उठ जाओ, खड़ा हो, युद्ध करो। हरे
प्राणायाम साधना वाला जो प्रयोग है, उसमें बताया कि आचार्य ने बोला कि जो पुण्यात्मा है उनको अपने रूप आकर्षण करना भगवान जो है आते हैं, भगवान की तरह ऐसा क्यों बोला कि प्राणायाम साधना है। प्रतिना छात्र ठीक है, लेकिन एक्चुअली जरूरत नहीं है, आते हैं भगवान का होता है, लेकिन मुख का मोह नहीं है, मुख का मोह है। और या ज्ञानवशलम में क्या है, जन्म काम चमेदित्व एवं जमेदित तत्व त्याग कर दे हम पुनर्जन्म नैति मावश्य। ये शरीर त्याग करने के बाद
नहीं आता पुनर्जन्म,
पुनर् नहीं आता है। और आचार्य लोग भी बोले क्या, जन्म मुक्ति के बाद की भक्त लोग जन्म के पहले मुक्त है, तो यह बोला त्यागता दे पुनर्जन्म। जो जो व्यक्ति है भगवान के जन्म का दिव्य जानते हैं, त्यागता दे पुनर्जन्म, ये देव त्याग कर और नहीं आना पड़े। तो आज जिले व्याख्या कर कृष्ण इतना क्यों बोलते, कृष्ण पहले बोल दिया नहीं, जो भगवान की इच्छा जानते हैं उसकी क्या, ये शरीर में मुक्त व्यक्ति है तो मरने के पहले मुक्त है, तो कृष्ण ने गलत बोला क्या, जिसका अर्थ क्या है, तो भगवान थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, तो भक्त लोग उनसे ज्यादा बोलते हैं। कोई बोलता है आप माना गुरु है, इसको ये बदमाश है मारना चाहिए, शिष्यों के हाँ गुरु मारा, ये कितना बदमाश, ये चुन किया, ये गुण किया, ये किया, ये किया, आप इसको रक्षा के नहीं, दूसरा आदमी होता कितना भी खत्म कर सकता है। हाँ ठीक है, अच्छा बोला। तो ये है भक्त का काम, तो भगवान थोड़ा बोलते, भक्त वाले उसको ज्यादा रक्षा करते हैं। भगवान बोला त्यागता देव पुनर्जन्म, भक्त लोग त्यागता देव की पहले ही मुक्त है, त्यागता देव का खेल दे देता है, छोटे छोटे के बाद क्या वो अभी से मुक्त है। इस तरह नहीं आते जो कृष्ण का बात को बुरे बोलना है, कृष्ण का बात को और शक्तिशाली कह रहा है, इस तरह भक्ति हिंदन तो सरस्वती रहते हैं बेंगम के दल हो जाते हैं, एक भक्ति हिंदन तो सरस्वती रहकर के एक जमींदार का गल्प है, एक जमींदार का नौकर था, तो वो नागर बोले बेगुन बहुत अच्छा चीज है। हाँ जमींदार सर, बेगुन के तो अच्छे चीज हो सकते थे, बेगुन में जगह थोड़ा भाजी करेंगे तो उसका पनीर वाटर मटर का खेल उसके पास है, तो उसका उसके भात भी होता है, उसका सब्जी भी होता है, उसे क्या नहीं होता। तो और एक दिन भी होता है बेगुन अच्छा चीज, बेगुन तो बेगुन का नाम है तो बेगुन है, कुछ गुण ही नहीं है, गुण खा दे एलर्जी होता है किया तो बाद में सबसे काम ना बहुत सारे बोले। तो बेगुन रुको, उसी में जब बोल रहा था पूछा सा करा था तुम इतना कुछ बोला, आज भी जब बोला तुम इतना बुरी बात दिया, बोला जमींदार साहब मैं बेगुन के नंबर नहीं है आपका नंबर, आप जो बोलेगा खराब है मैं खराब से बोलूंगा, आप जो बोला अच्छा मैं अच्छा बोलूंगा, मैं बेगुन के नकल नहीं हूँ। कि भक्त लोग वो किसी का नगर नहीं है। भगवान जब बोला तो उसको और स्थापित करना चाहते हैं, भगवान बोला और करके ठीक है।